रस निष्पत्ति एवं साधारणीकरण। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय में रस सूत्र का प्रतिपादन करते हुए लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार उन्होंने रस निष्पत्ति के आधारभूत तत्वों अथवा घटक तत्वों का तो उल्लेख सूत्र रूप में कर दिया, किंतु फिर भी प्रश्न यह उठता है कि इन घटक तत्वों का क्रम एवं उपयोग किस प्रकार संभव है। दूसरे शब्दों में उन्होंने घटक तत्वों का उल्लेख कर दिया, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पर प्रकाश नहीं डाला। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमें किसी व्यंजन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों की सूची दे दे किंतु उसके निर्माण के विधि विधान पर प्रकाश न डाले तो उस स्थिति में उक्त व्यंजन का निर्माण कठिन हो जाएगा। अतः आचार्य भरत मुनि के परवर्ती रसचिंतकों ने उनके सूत्र को स्पष्ट करते हुए रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। दुर्भाग्य से इन परवर्ती आचार्यों के ग्रंथ अनुपलब्ध हैं, अतः इस संबंध में स्पष्ट एवं निश्चित रूप से तो कुछ कहना कठिन है, किंतु काव्य दर्पणकार मम्मट ने एवं आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी अभिनव भारती में रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के भी कुछ मतों का संक्षेप में उल्लेख किया है। जिन आचार्यों की चर्चा उपर्युक्त दोनों विद्वानों ने की है उनमें भट्ट लोल्लट, शंकुक एवं भट्ट नायक का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि इन आचार्यों के मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है तथा उनके विचारों का परिचय हमें केवल मात्र परवर्ती युग के उपर्युक्त दो विद्वानों के उदाहरणों से ही प्राप्त होता है, यहाँ यह तथ्य ध्यातव्य है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने इनके मतों का उल्लेख उनका खंडन करने के उद्देश्य से ही किया था। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि उनके द्वारा उद्धृत मत अपने मूल रूप का प्रतिनिधित्व किस सीमा तक करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रतिद्वंद्वी या विरोधी पक्ष का आचार्य जब खंडन करने की दृष्टि से किसी मत को उद्धृत करता है तो उसके साथ पूरा न्याय करने में बहुत कम सफल होता है। वह विवेच्य मत के त्रुटिपूर्ण पक्षों पर अधिक बल देगा और उसके महत्वपूर्ण पक्षों को ही तिरोहित कर देगा। फिर भी आचार्य अभिनव गुप्त का दृष्टिकोण अत्यधिक संतुलित था, अतः उन्होंने पूर्ववर्ती मतों को उद्धृत करके न केवल उनके साथ न्याय किया है अपितु उनके अस्तित्व को भी सुरक्षित रखने में योग दिया है। क्योंकि आज आचार्य भट्ट लोल्लट, शंकुक और भट्ट नायक के मूल ग्रंथ अनुपलब्ध हो जाने के कारण उनके मतों की जानकारी का आधार स्रोत काव्य प्रकाश एवं अभिनव भारती ही हैं। वस्तुतः काव्य प्रकाश में उद्धृत अंश अत्यंत संक्षिप्त है, अतः इन मतों का सम्यक ज्ञान हमें अभिनव भारती से ही प्राप्त होता है। अस्तु, आगे हम इसी के आधार पर इन विद्वानों के मतों का अध्ययन क्रमशः प्रस्तुत करेंगे। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद। भट्ट लोल्लट ने भरत के रस सूत्र की विस्तृत विवेचना करते हुए अनेक नूतन स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने रस निष्पत्ति का स्पष्टीकरण करते हुए निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है, इसीलिए उनके मत को उत्पत्तिवाद की संज्ञा दी जाती है। उनकी प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं। क, विभावादि का संयोग स्थायी से। रस सूत्र में विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति मानी गई है, किंतु उसमें स्थायी भाव का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि काव्य में रस निष्पत्ति का मूल आधार ही स्थायी भाव होता है। अतः भट्ट लोल्लट ने रस सूत्र की इस न्यूनता या त्रुटि की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट लिखा कि वस्तुतः विभावादि तत्वों का संयोग स्थायी भाव से होता है, स्थायी भाव के उल्लेख के अभाव में यह सूत्र अपूर्ण रह जाता है। ख, रस सिद्धांत की प्रक्रिया। भट्ट लोल्लट ने रस के विभिन्न अवयवों का क्रम, महत्व एवं योगदान स्पष्ट करते हुए रस निष्पत्ति की तीन प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डाला है, वे हैं उत्पत्ति, प्रतीति एवं पुष्टि। भट्ट लोल्लट के अनुसार विभावों से स्थायी भाव या रस की उत्पत्ति होती है, अनुभावों से उसकी प्रतीति तथा संचारी भावों से उसकी पुष्टि होती है। इस प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम दही की लस्सी का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। दही, पानी, बर्फ और चीनी आदि को मिलाकर तथा मथकर लस्सी तैयार की जाती है। दही मूल उपादान है जिससे लस्सी तैयार होती है। पानी, बर्फ और चीनी से वह बढ़ती है या पुष्ट होती है और मंथन क्रिया से उत्पन्न झाग यह प्रतीत करवाते हैं कि अब लस्सी तैयार हो गई है। इस उदाहरण को रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पर लागू करते हुए कहा जा सकता है कि दही विभाव है जिसका लस्सी रूप में उत्पादक उत्पाद्य संबंध है, कि पानी, बर्फ और चीनी आदि संचारी भाव है जिसका लस्सी से पोष्य पोषक संबंध है, पुष्टि है, तथा झाग अनुभाव है जो लस्सी रूपी रस की प्रतीति करवाते हैं। यद्यपि विद्वानों ने भट्ट लोल्लट के मत को उत्पत्तिवाद माना है, किंतु हमारे विचार से यह नाम भ्रामक है, क्योंकि आचार्य भट्ट लोल्लट ने केवल उत्पत्ति की प्रक्रिया को नहीं अपितु पुष्टि और प्रतीति की प्रक्रिया को ही मान्यता प्रदान की है। ग संचारी भाव और अस्थाई भाव का संबंध। भट्ट लोल्लट ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि एक ही व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव और संचारी भाव दोनों का अस्तित्व तो एक साथ कैसे संभव है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कई बार संचारी भाव स्थायी भाव से विरोधी प्रकृति का भी होता है, जैसे कि रति या प्रेम स्थायी भाव में नायिका का क्रोध। प्रेम और क्रोध दो सर्वथा विरोधी मनस्थितियां मानी जाती हैं, अतः दोनों का सह अस्तित्व कैसे संभव है। भट्ट लोल्लट ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि संचारी भाव संस्कार रूप में ही स्थायी भाव के साथ रहते हैं। उन्होंने इस तथ्य का भी उद्घाटन किया है कि स्थायी भाव के अनुद्भूत रूप हैं। यहाँ संचारी भाव उसके उद्भूत रूप के द्योतक हैं। इससे स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि जब स्थायी भाव उद्बुद्ध या जागृत होता है तो वह परिस्थिति भेद के अनुसार नाना रूपों में व्यक्त होता है। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके प्रेम की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है। उदाहरण के लिए, प्रेमी से मिलने पर हर्ष होता है, उसके वियोग पर शोक होता है, उसके द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार समय पर न आने के कारण उस पर क्रोध आता है, जब वह हमारी उपेक्षा करके किसी और को अधिक महत्व देने लगता है तो ईर्ष्या होती है, और यहाँ तक कि जब वह दुखी या पीड़ित होता है तो हमारे मन में अपार सहानुभूति या करुणा का उद्वेलन होता है। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न ये भावावेग हर्ष, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, करुणा आदि हमारी प्रणय भावना के ही सूचक या द्योतक हैं, या इनके कारण ही हमारी प्रेम की गंभीरता का बोध होता है। यदि प्रिय के मिलन पर हमें हर्ष नहीं होता अथवा उसकी विदाई पर शोक नहीं होता तो कहना चाहिए कि उस स्थिति में हमारा प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं होता। अस्तु, प्रेम या रति स्थायी भाव को तो उपर्युक्त सभी अनुकूल या प्रतिकूल सहचारी भावों के साथ विद्यमान रहती हैं, जिन्हें रस शास्त्रीय शब्दावली में संचारी भाव कहा गया है। अस्तु, भट्ट लोल्लट की यह धारणा सही है कि संचारी भाव और स्थायी भाव दोनों की स्थिति एक साथ संभव है, भले ही वे बाह्य दृष्टि से परस्पर विरोधी ही क्यों न प्रतीत होते हों। वस्तुतः स्थायी भाव का उद्बोधन ही संचारी भावों के माध्यम से प्रतीत होता है, अतः दोनों में किसी प्रकार की अभिन्नता या विच्छिन्नता स्वीकार नहीं की जा सकती। घ स्थायी भाव व रस में अंतर। भट्ट लोल्लट के अनुसार स्थायी भाव और रस में आधारभूत अंतर यह है कि जहाँ स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि अवयवों से युक्त नहीं होता, वहाँ रस इनसे संयुक्त होता है। हमारे विचार से भट्ट लोल्लट का यह मत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लौकिक जीवन में भी जब भी स्थायी भाव का उद्वेलन होगा तो उस समय उसका कोई न कोई आलंबन उद्दीपन अनुभाव संचारी भाव आदि का अस्तित्व लौकिक रूप के अनुसार रहता है। अतः भट्ट लोल्लट के द्वारा दोनों में निर्दिष्ट किया गया अंतर उचित नहीं है। अंग रस की स्थिति किसमें। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में होती है, या अभिनेता अभिनेत्रियों में, अथवा केवल पाठक या दर्शकों में। यह प्रश्न भी रस सिद्धांत के संदर्भ में विचारणीय रहा है। लोल्लट के अनुसार रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। अभिनेता या अभिनेत्रियां तो उसकी केवल अनुकृति मात्र प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, शकुंतला नाटक में प्रणय स्थायी भाव की वास्तविक अनुभूति तो मूल ऐतिहासिक पात्र अर्थात दुष्यंत और शकुंतला को हुई थी। नाटक में अभिनय करने वाले दुष्यंत और शकुंतला परस्पर वास्तविक प्रेम का अनुभव नहीं करते, अभी तो उसका केवल अभिनय करते हैं। पाठक या दर्शक की अभिनेता भी अभिनेता अभिनेत्रियों में वास्तविक पात्रों के अनुरूप अभिनय को देखकर प्रेम की प्रतीति करते हैं। इस प्रकार भट्ट लोल्लट रस की वास्तविक अनुभूति नाटक के मूल या ऐतिहासिक पात्रों में ही मानते हैं। हमारे विचार से इस मत में भी थोड़ी सी त्रुटि है। ऐतिहासिक मूल पात्र स्थायी भाव की अनुभूति प्राप्त करते हैं, न कि रस की। प्रेम में तो कदाचित स्थायी भाव और रस का अंतर अधिक स्पष्ट नहीं हो पाता, किंतु यदि हम शोक या करुण रस के आधार पर विचार करें तो स्पष्ट होगा कि शोक की वास्तविक अनुभूति तो संबंधित मूल पात्रों को ही होती है, किंतु उसके रस रूप में परिणत काव्य नाटक या कला के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के अनंतर ही कलाकारों दर्शकों एवं पाठकों को उपलब्ध होती है। हमें यहाँ यह न भूलना चाहिए कि स्थायी भाव लौकिक अनुभूति है, जबकि रस कलाजन्य अनुभूति है जिसकी उपलब्धि कला के माध्यम से ही संभव है। च तद्रुपतानुसंधान से प्रतीति। यद्यपि नाटक के दर्शक पहले से ही जानते हैं कि जो अभिनेता राम का अभिनय कर रहा है वो वास्तव में राम नहीं है और न ही सीता का अभिनय करने वाली अभिनेत्री सीता है, यही नहीं कोई बात तो चलचित्र या फिल्म में पहले से ही यह विज्ञापित होता है धर्मेंद्र राम का अभिनय कर रहे हैं या हेमा मालिनी सीता का। ऐसी स्थिति में दर्शक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को देखकर राम और सीता के या दुष्यंत और शकुंतला के क्रियाकलापों को एवं उसके भावाभिव्यंजक व्यापारों को वास्तविक कैसे मान सकते हैं। जब दर्शक को स्पष्ट रूप में इस तथ्य का बोध है कि रजत पट पर प्रस्तुत दुष्यंत और शकुंतला न तो वास्तविक दुष्यंत और शकुंतला है और न ही उनके क्रियाकलाप एवं भाव वास्तविक हैं, वह इस तथ्य को जानता है कि यह सब कुछ कृत्रिम है। ऐसी स्थिति में दर्शक उनसे क्यों प्रभावित होता है और किस प्रकार वह उनके भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। इस संदर्भ में यह भी तर्क दिया जाता है कि हम रस्सी से बने हुए कृत्रिम सांप से तब तक ही भयभीत होते हैं जब तक उसे वास्तविक सर्प के रूप में ग्रहण करते हैं, किंतु जब हम यह जान जाते हैं कि वह सर्प नहीं रस्सी मात्र है तो उस स्थिति में हमारे मन में भय की भावना जागृत नहीं होती। अतः नाटक में भी यह जान लेने पर सही पात्र और उनके विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि सब यथार्थ न होकर कृत्रिम है तो उस स्थिति में अस्थायी भाव की निष्पत्ति किस प्रकार संभव है। भट्ट लोल्लट ने इसका उत्तर देते हुए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है कि हम अभिनेताओं में मूल पात्रों के अनुरूप गतिविधियां देखकर ही भाव की प्रतीति करते हैं। यह बात एक सीमा तक ठीक भी है। किसी भी फिल्म को देखते समय हम पहले से जानते हैं कि उसका नायक एक लखपति या करोड़पति अभिनेता है जो कि बंबई के भव्य भवनों में निवास करता है, किंतु फिर भी जब वह भिखारी के रोल में अवतरित होता है तो उसका रूप, उसकी आकृति, उसकी वेशभूषा, उसके हाव भाव, उसका रुदन आदि सब कुछ वास्तविक भिखारी के इतना अनुरूप प्रतीत होता है कि हम थोड़ी देर के लिए उसे एक सामान्य भिखारी के रूप में ही ग्रहण कर लेते हैं। इस तथ्य को जानते हुए भी वह वास्तविक जीवन में भिखारी नहीं है, एक करोड़पति अभिनेता है। वस्तुतः अभिनेता का भिखारी के तद्रूप अभिनय करना और उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना, ये दोनों बातें अभिनेता की अभिनय कला एवं दर्शक की सहृदयता की द्योतक हैं। अतः हमारे विचार से भट्ट लोल्लट का तद्रूपतानुसंधान प्रतीति का सिद्धांत संगत एवं उचित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भट्ट लोल्लट ने एक सूत्र की व्याख्या करते हुए अनेक नूतन मौलिक एवं क्रांतिकारी स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं जो कि रस सिद्धांत की चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग देती हैं। शंकुक का अनुमतिवाद। मम्मट एवं अभिनव गुप्त ने भट्ट लोल्लट के अंतर शंकुक के विचारों की चर्चा की है जिन्हें समन्वित रूप में अनुमतिवाद की संज्ञा दी जाती है। आचार्य शंकुक के मतानुसार रस की निष्पत्ति का अर्थ है रस की अनुमति, इसीलिए उनके मत को अनुमतिवाद कहा जाता है। शंकुक के मत की मुख्यतः दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जिसमें भट्ट लोल्लट के मत का खंडन किया गया है जबकि दूसरे पक्ष में उन्होंने अपनी मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं। यहाँ हम पहले प्रथम पक्ष को लेते हैं। शंकुक ने वैसे तो भट्ट लोल्लट के मत पर कई आक्षेप किए हैं किंतु उनमें अधिक महत्वपूर्ण ये हैं। एक, भट्ट लोल्लट ने कहा था कि रससूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख न होना उनकी अपूर्णता या त्रुटि है, किंतु शंकुक ने प्रतिपादित किया कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पृथक स्थायी भाव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए उसका उल्लेख न करना ही उचित था। हमारे विचार से स्थायी भाव रस का मूल आधार है। इसी के भेदों के अनुसार स्वयं भरत मुनि ने भी रस के 8 भेदों की स्थापना की थी। अतः स्थायी भाव जैसे तत्व का रस सूत्र में उल्लेख न होना निश्चय ही इस सूत्र की अपूर्णता का सूचक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं शंकुक अपने मत का प्रतिपादन करते समय स्थायी भाव की चर्चा बार बार करते हैं। ऐसी स्थिति में रस की परिपूर्ण व्याख्या में स्थायी भाव का उल्लेख या निर्देश अपरिहार्य है। अस्तु, हम यहाँ शंकुक के मत से सहमत नहीं हो सकते। शंकुक ने दूसरा महत्वपूर्ण आक्षेप ये किया है कि भट्ट लोल्लट ने स्थायी भाव और रस को एक ही माना है जबकि दोनों में गहरा अंतर है। यहाँ हम शंकुक की अवधारणा को तो स्वीकार कर लेते हैं कि स्थायी भाव और रस दोनों एक नहीं है, निश्चय ही दोनों में गहरा अंतर है, किंतु यह अंतर क्या है इस प्रश्न का सम्यक उत्तर न भट्ट लोल्लट दे सके हैं और न ही स्वयं शंकुक। ऐसी स्थिति में शंकुक का आक्षेप करना विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। शंकुक ने रस निष्पत्ति की पूर्वोक्त तीनों प्रक्रियाओं उत्पत्ति, पुष्टि एवं प्रतीति का विरोध किया, किंतु उनका यह विरोध किसी ठोस आधार पर नहीं है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे विचार से भट्ट लोल्लट ने इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से रस के तीनों अवयवों के योगदान को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण योग दिया था जिसे शंकुक संभवतः अपने पूर्वाग्रह के कारण स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकुक के द्वारा आरोपित सभी आक्षेप विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु उन्होंने इस संदर्भ में जो नूतन स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं वे निश्चय ही महत्वपूर्ण हैं। उनकी चर्चा आगे की जाएगी। क, स्थायी भाव का विभावादि से संबंध। स्थायी भाव से विभाव आदि का संबंध स्पष्ट करते हुए शंकुक ने बताया कि विभाव स्थायी भाव के कारण अनुभाव कार्य है तथा संचारी भाव उसके सहचारी है। स्थायी भाव की प्रत्यक्ष प्रतीति असंभव। शंकुक के मतानुसार नाटक में स्थायी भाव का अस्तित्व प्रत्यक्ष रूप में कभी संभव नहीं है, उसकी प्रतीति विभाव अनुभाव संचारी आदि के माध्यम से ही होती है। उदाहरण के लिए यदि हम शकुंतला नाटक देख रहे हैं तो उसमें उसके स्थायी भाव रति या प्रणय प्रत्यक्ष रूप में कहीं नहीं देखते, अपितु हम दुष्यंत और शकुंतला के रूप एवं सौंदर्य, प्राकृतिक वातावरण, दोनों के हाव भाव, उनके क्रियाकलाप एवं उनकी अनुभूतियों के ही व्यंजना से इस तथ्य का बोध प्राप्त करते हैं कि दोनों में प्रेम हो गया है। स्वयं प्रेम कभी भी हमारे चक्षुओं के समक्ष प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं होगा। निश्चय ही शंकुक की यह चक्षुओं के समक्ष प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं होगा स्थापना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अस्थायी भावों का प्रत्यक्षीकरण कभी नहीं होता, वे केवल अपने अवयवों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में ही व्यक्त होते हैं। यह बात न केवल नाटक और कला अपितु लौकिक जीवन में भी लागू होती है। स रस की अनुमति। आचार्य शंकुक ने न्याय दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। स्वयं अनुमिति शब्द भी न्याय शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, अतः इसका अर्थ हमें भली भांति स्पष्ट कर लेना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के चार साधन हैं: एक, वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में देखना; दूसरा, अनुमान; तीसरा, उपमान; और चौथा, शब्द। उदाहरण के लिए आग को प्रत्यक्ष देखकर आग का ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष है, जबकि कहीं धुआं को प्रकट होते देखकर दूर से आग लगने की बात सोचना अनुमान है। आग के सदृश किसी और वस्तु को देखकर या किसी के द्वारा आग का विवरण शब्दों में सुनकर आग की सूचना प्राप्त करना क्रमशः उपमान और शब्द के उदाहरण है। अनुमिति का संबंध केवल अनुमान से है, जिसके भी तीन भेद माने गए हैं: पहला पूर्ववत अनुमान, दूसरा शेषवत अनुमान एवं तीसरा सामान्योदृष्ट अनुमान। जब हम किसी वस्तु की पूर्व स्थिति को देखकर आगे की घटना का अनुमान करते हैं तो यह पूर्ववत अनुमान है। उदाहरण के लिए आसमान में बादलों की घटा को देखकर वर्षा के आगमन का अनुमान कर लेना पूर्ववत अनुमान है। इसी प्रकार किसी ही वस्तु या घटना की परवर्ती स्थिति को देखकर अनुमान करना शेषवत अनुमान है। जैसे कि हम किसी नए स्थान पर जाएं, वहां सारी धरती पानी से भीगी है और नदी नालों में बाढ़ आती हुई हो, तो हम अनुमान कर लेते हैं कि इससे पूर्व भारी वर्षा हुई होगी, यहां शेषवत अनुमान है। कई बार हम सामान्य परिस्थितियों के आधार पर भी किसी वस्तु का अनुमान कर लेते हैं, जैसे कि प्रतिवर्ष जुलाई में मानसून आता है, अतः हम हर वर्ष अनुमान कर लेते हैं कि इस महीने वर्षा होगी, यह सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। अनुमान की सहायता से प्राप्त होने वाला ज्ञान ही अनुमिति कहलाता है। शंकुक ने उपर्युक्त अनुमान सिद्धांत को रस पर लागू करते हुए प्रतिपादित किया है कि विभाव पूर्ववत अनुमान है, अनुभाव शेषवत अनुमान है और संचारी भाव सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। शंकुक का उपर्युक्त वर्गीकरण अनुमान सिद्धांत के संदर्भ में तो ठीक है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या हम किसी नाटक या फिल्म में देखने की प्रक्रिया को अनुमान की प्रक्रिया मान सकते हैं? अनुमान बुद्धि की प्रक्रिया है, न कि अनुभूति की। जबकि हम नाटक, काव्य एवं कला के आस्वादन के समय बुद्धि का कम, अनुभूति और कल्पना का उपयोग अधिक करते हैं। अनुमान में जैसी बौद्धिकता है, वैसी बौद्धिकता कला आस्वादन में संभव नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय का उदाहरण दिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार घोड़े के चित्र को देखकर घोड़े का अनुमान कर लेते हैं, उसी प्रकार नाटक के पात्रों का अभिनय देखकर हम रस की अनुमति कर लेते हैं। हमारे विचार से शंकु का यह उदाहरण ही असंगत है, क्योंकि घोड़े के चित्र को देखकर हम घोड़े का अनुमान नहीं करते अपितु उसका बोध प्राप्त करते हैं। यदि हम किसी रेतीले मार्ग पर चल रहे हैं और वहाँ किसी पशु के पैरों के चिन्ह बने हों, तो वहाँ हम अपनी बुद्धि एवं ज्ञान के द्वारा इस बात का अनुमान करते हैं कि ये पदचिन्ह किस पशु के हैं, किसी घोड़े के, खच्चर के या गर्दभ के। जब पदचिन्हों को देखकर हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि इधर से पहले कोई घोड़ा ही गया है, तो हाँ, हम उसे अनुमान की प्रक्रिया कहेंगे। किंतु घोड़े के साक्षात चित्र को देखकर घोड़े का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अस्तु, हमारे विचार से भले ही शंकुक ने न्याय दर्शन के आधार पर रस की नई व्याख्या करके अपनी विद्वत्ता या मौलिकता को प्रमाणित कर दिया हो, किंतु हम नहीं समझते कि उसका अनुमान सिद्धांत या उनका अनुमितिवाद रस की अवधारणाओं को स्पष्ट करने में कोई महत्वपूर्ण योग देता है। जहाँ तक रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के स्पष्टीकरण की बात है, शंकुक ने भट्ट लोल्लट की सरल और स्पष्ट बातों की भी दार्शनिकता के आवरण में प्रस्तुत करके उन्हें और भी अधिक दुरूह एवं जटिल बना दिया है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के स्पष्टीकरण में भट्ट नायक अनुमानतः 9वीं शताब्दी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उनका मूल ग्रंथ हृदय दर्पण उपलब्ध नहीं है, अतः उनके मत की जानकारी केवल मम्मट और अभिनव गुप्त के उद्धरणों से ही मिलती है। उनकी मौलिक स्थापनाएँ निम्नलिखित हैं। 1. काव्यास्वादन की 3 प्रक्रियाएँ। अब तक रस निष्पत्ति का विवेचन विश्लेषण केवल नाटक की दृष्टि से ही किया जाता रहा, किंतु भट्ट नायक ने नाटक के स्थान पर काव्य की दृष्टि से उस पर विचार किया। उन्होंने काव्यास्वादन या रस निष्पत्ति की 3 प्रक्रियाओं का निर्धारण किया, 1. अविधा की प्रक्रिया, 2. भावकत्व की और 3. भोजकत्व की प्रक्रिया। अविधा की प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम हम काव्य के अनुशीलन द्वारा उसका अर्थबोध करते हैं। यदि काव्य का अर्थ ही हमें ज्ञात नहीं तो हम इस स्थिति में उसके आस्वादन का प्रश्न ही नहीं उठता। उदाहरण के लिए, यदि हमें जर्मन भाषा में रचित अत्यंत सुंदर काव्य भी सुनाया जाए तो उससे हमें जर्मन भाषा के ज्ञान के अभाव में किसी भी प्रकार की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी, जबकि नाटक में हम ऐसे दृश्यों एवं क्रियाकलापों का ही थोड़ा आस्वादन कर सकते हैं जो भले ही किसी अज्ञात भाषा में प्रस्तुत हों किंतु काव्य में ऐसा संभव नहीं। इसीलिए अविधा व्यापार या अविधा की प्रक्रिया को भट्ट नायक ने काव्यास्वादन के लिए सबसे पहला स्थान दिया है, किंतु अविधा शक्ति के द्वारा प्राप्त अर्थ हमारे भौतिक ज्ञान के स्तर तक ही सीमित रहता है। वह हमारे हृदय की भावनाओं को बहुत कम स्पर्श कर पाता है। जब अर्थबोध के अनंतर काव्यगत वस्तु हमारे हृदय में ही भावना या अनुभूति का उद्वेलन करने लगती है, तो इस स्थिति को भट्ट नायक के शब्दों में भावकत्व की प्रक्रिया का नाम दिया जा सकता है। भावकत्व से उनका आशय काव्य वस्तु के भावन या उसके संवेदन से था। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि काव्य की विषय वस्तु अनुभूति गम्य होने लगती है तो यह स्थिति भावकत्व व्यापार की सूचक है। भावकत्व के अनंतर भोजकत्व की स्थिति आती है, जबकि हमारी काव्यजन्य अनुभूतियां अपनी लौकिक सीमाओं से मुक्त होकर आनंद में परिणत हो जाती हैं। इसी आनंद का उपभोग भोग या भोजकत्व की प्रक्रिया एवं स्थिति का सूचक है। साधारणीकरण। यहाँ यह ध्यातव्य है कि काव्यजन अनुभूति आनंदानुभूति या रस दशा में परिणित हो, इसके लिए आवश्यक है कि उन अनुभूतियों का साधारणीकरण हो जाए। साधारणीकरण से तात्पर्य है कि काव्यगत अनुभूतियों का व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर सर्वसाधारण तक व्याप्त हो जाना। उदाहरण के लिए, हम राम लीला में लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में राम को अपनी भाई के मूर्छित हो जाने के कारण शोकपूर्ण स्थिति में देखते हैं। कवि यहाँ जिस शोक का चित्रण करता है वह राम का है, पाठकों या श्रोताओं का नहीं। फिर भी राम के शोक से पाठक या श्रोता भी अभिभूत हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि काव्यगत शोक किसी एक व्यक्ति का शोक न रहकर सर्वसाधारण के या समस्त मानव समाज के शोक में परिवर्तित हो जाता है। अतः यदि हम साधारणीकरण को सामाजिकरण का अभिप्राय माने तो अनुचित न होगा। यहाँ साधारणीकरण के संबंध में कई प्रश्न उठ सकते हैं। एक तो यह कि क्या काव्य के प्रत्येक पात्र की भावनाओं का साधारणीकरण हो जाता है अथवा नहीं। दूसरा, साधारणीकरण का मूल आधार क्या है। तीसरा, साधारणीकरण का लौकिक भावों एवं काव्यगत रूप से क्या संबंध है। यहाँ इन पर क्रमशः विचार किया जाता है। इस प्रश्न पर अब तक अनेक आचार्य विचार कर चुके हैं कि काव्य में किसकी भावनाओं का साधारणीकरण होता है। संस्कृत के अधिकांश आचार्यों का मत था कि काव्य के नायक की भावानुभूतियों का साधारणीकरण होता है, किंतु यह बात उसी स्थिति में लागू होती है जबकि वह नायक उदात्त प्रकृति का हो। उदाहरण के लिए, यदि काव्य का नायक कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति हुआ तो उसके साथ हमारी सहानुभूति नहीं रहेगी, अतः वहाँ साधारणीकरण भी नहीं होगा। हिंदी के आचार्यों ने भी इस प्रश्न पर अपने अपने ढंग से विचार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार काव्य में प्रस्तुत आलंबन का साधारणीकरण होता है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि की भावनाओं का साधारणीकरण होता है, किंतु ये दोनों ही मत अपूर्ण एवं अस्पष्ट हैं। कुछ वाक्यों काव्यों में, विशेषता मुक्तक या गीति काव्य में, स्वयं कवि ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, अतः इससे इतर कोई और पात्र नहीं होता। ऐसी स्थिति में आचार्य शुक्ल का मत अव्यवहारिक सिद्ध हो जाता है। दूसरी ओर, अधिकांश प्रबंध काव्यों में कवि स्वयं प्रकट नहीं होता, वह विभिन्न पात्रों का ही प्रस्तुतिकरण करके रह जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की भावनाओं के साधारणीकरण की बात भी अस्पष्ट प्रतीत होती है, क्योंकि जहाँ कवि की कवि ही विद्यमान नहीं है वहाँ उसकी भावनाओं के संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ कहना कठिन है। उपर्युक्त सभी मतों पर समन्वित रूप से विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि काव्यगत पात्र कवि की भावनाओं या अनुभूतियों के प्रतिनिधि होते हैं। विभिन्न पात्र वही रूप प्राप्त करते हैं जो कवि चाहता है। यदि हम उन पात्रों को उसी रूप में ग्रहण कर सकें जिस रूप में उन्हें चित्रित किया गया है, तो यह उनका साधारणीकरण होगा। जहाँ कवि स्वयं ही काव्य का अनेक प्रमुख पात्र है, वहाँ भी कवि के भावनाओं का साधारणीकरण होगा या उसके साथ पाठक का तादात्म्य स्थापित होना आवश्यक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कवि कई बार एक ही परिस्थिति में दो परस्पर विरोधी भावों की अभिव्यक्ति करता है, किंतु उनमें से एक का साधारणीकरण हो जाता है, अन्य का नहीं। उदाहरण के लिए, रामचरितमानस के परशुराम लक्ष्मण संवाद में एक क्रोध सहभूत है तो दूसरा उसके उपहास में लीन है। यहाँ क्रोध एवं उपहास दो परस्पर विरोधी भाव एक साथ व्यक्त किए गए हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि हमारा साधारणीकरण किसके साथ होता है और क्यों। इसके उत्तर में निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इस प्रसंग में लक्ष्मण का उपहास भाव ही साधारणीकृत हो पाता है, परशुराम का क्रोध नहीं, अपितु उनका क्रोध भी हमारे उपहास की पुष्टि में योग देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि काव्य में चित्रित प्रत्येक भाव का साधारणीकरण उसी सीमा तक होता है जहाँ तक कि कवि की भावनाओं के वह अनुरूप हैं। दूसरे शब्दों में काव्यगत भाव कवि की भावनाओं के प्रतिनिधि हैं तथा कवि उन्हें जिस रूप में भावित करता है उसी रूप में वे साधारणीकृत होते हैं। यही कवि की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह कवि काव्य या पाठक की किसी विशेष न्यूनता या त्रुटि का द्योतक है। लौकिक भाव या हमारे दैनिक जीवन के भाव हमारे व्यक्तित्व की सीमाओं से आबद्ध रहते हैं, इसलिए वे सर्वसाधारण की अनुभूति के विषय नहीं बन पाते। मान लीजिए एक व्यक्ति की 1 लाख रुपए की लॉटरी खुली है। वह हर्ष में विभोर होकर अपने आसपास के सब लोगों को कहता फिर रहा है कि मेरी लॉटरी खुल गई, किंतु उसके इस हर्ष में कितने लोग भागीदार होंगे। उसके कुछ संबंधियों या मित्रों को छोड़कर शेष लोग कहेंगे, हमें इससे क्या, तुम्हारी लॉटरी खुली है तो तुम्हें पैसा मिलेगा। अस्तु, लौकिक जीवन की भावानुभूतियाँ व्यक्ति विशेष की सीमाओं में आबद्ध रहती हैं, जबकि काव्य और कला में वे उन सीमाओं से मुक्त हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को पाश्चात्य विद्वानों ने निर्व्यक्तिकता का नाम दिया है, जिसे भारतीय शब्दावली में साधारणीकरण कहा जाता है। इस संदर्भ में एक प्रश्न और विचारणीय रह गया है, वह यह कि काव्य में साधारणीकरण का आधार क्या है। इसके उत्तर में कलात्मक एवं दार्शनिक दृष्टि से अलग अलग बातें कही गई हैं। कलात्मक दृष्टि से व्याख्या करते हुए भट्टनायक ने यह बताया है कि काव्य में दोषों के अभाव तथा गुण एवं अलंकारों के संयोजन से तथा नाटक में अभिनय के प्रभाव से काव्यगत विभावों का साधारणीकरण हो जाता है। यद्यपि यह बात भट्टनायक के द्वारा भलीभांति स्पष्ट नहीं हो पाती, किंतु इसका तात्पर्य है कि काव्य में गुण अलंकार आदि के कारण सौंदर्य का संचार हो जाता है और यह सौंदर्य ही साधारणीकरण का मूल आधार है। नाटक में भी अभिनय कला के सौंदर्य के कारण साधारणीकरण होता है, किंतु यह तो काव्यगत रचनागत आधार है जो कि साधारणीकरण के एक ही पक्ष को प्रस्तुत करता है। साधारणीकरण का दूसरा पक्ष पाठक, श्रोता या दर्शक से संबंधित है। काव्यास्वादन के समय पाठक या श्रोता भी निज मोह संकटता निवारण के बाद ही साधारणीकरण में सफल हो सकता है। निज मोह संकटता निवारण का अर्थ है कि पाठक भी अपने निजी मोह राग द्वेष के बंधन की सीमाओं से मुक्त होने पर ही साधारणीकरण का भागीदार हो सकता है। इसी को पीछे निर्व्यक्तिकता कहा गया है। भट्ट नायक ने निर्व्यक्तिकता के आधारभूत कारण का स्पष्टीकरण भारतीय दर्शन के आधार पर भी किया है। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्ति में 3 प्रकार की मनस्थितियां रहती हैं, सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान एवं तमोगुण प्रधान। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति में सत, रज और तम न्यूनाधिक मात्रा में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु परिस्थिति विशेष में इनमें से भी कभी एक गुण प्रधान हो जाता है और कभी दूसरा तथा शेष गुण उसी के अधीन हो जाते हैं। सत्व गुण की स्थिति में हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं तथा उस स्थिति में हम प्रत्येक तत्व या क्रियाकलाप को तटस्थ दृष्टि से देख पाते हैं। कलात्मक आस्वादन के लिए इसी तटस्थता की आवश्यकता है जो कि सत्व गुण की सूचक है। काव्य, नाटक या कला के आस्वादन के समय सामाजिक की मानसिकता सत्वगुण प्रधान हो जाती है, जो कि तटस्थता का ही दूसरा नाम है। इसी के फलस्वरूप वह कला के सौंदर्य का आस्वादन यथार्थ रूप में कर पाता है। उपर्युक्त तथ्य की ओर अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच फुटबॉल का मैच हो रहा हो। दर्शक में भारतीय, पाकिस्तानी एवं जापानी, इन तीनों देशों के लोग हैं। अब सोचिए मैच का वास्तविक आनंद किसे प्राप्त होगा। जब भारत का खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा होता है और पाकिस्तान को गोल कर देता है तो उस समय पाकिस्तानी दर्शक दुखी होते हैं। उसी प्रकार जब इसके विपरीत पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने अद्भुत कौशल का परिचय देता हुआ भारत को गोल कर देता है, तब भारतीय दर्शक दुखी हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी दर्शक हर्ष विभोर हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारतीय और पाकिस्तानी दर्शक खेल के वास्तविक कौशल को नहीं देखते, अपितु भी अपनी हार या जीत को देखते हैं, सुख या दुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। जबकि इन दोनों से पृथक जापानी दर्शक खेल का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। वह तटस्थ दृष्टि से एक एवं निर्वैयक्तिक भाव से प्रत्येक खिलाड़ी की कला का आस्वादन करता है, भले ही वह खिलाड़ी भारत का हो अथवा पाकिस्तान का। ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों के कला कौशल के वास्तविक सौंदर्य का आस्वादन न भारतीय दर्शक करते हैं और न पाकिस्तानी, अपितु वह जापानी दर्शक करता है, जो कि अपने पराये की भावना से मुक्त है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साधारणीकरण का मूल आधार एक ओर तो काव्यगत सौंदर्य है तो दूसरी ओर प्रमाता की निर्वैयक्तिकता का या तटस्थता है। इन दोनों के संयोग से ही काव्य के माध्यम से व्यक्त भाव या विचार साधारणीकृत हो पाते हैं। इस साधारणीकरण का ही दूसरा अंग है तादात्म्य। तादात्म्य से तात्पर्य है उसकी आत्मा से मेल। काव्य के प्रसंग में कवि की भावनाओं में के साधारणीकरण के फलस्वरूप कवि और पाठक में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। यह तादात्म्य की स्थिति सहानुभूति की स्थिति नहीं है, अपितु उससे और अधिक निकटता की स्थिति है, जिसे आधुनिक युग के कलाशास्त्रियों ने समानुभूति एम्पैथी की संज्ञा देते हुए उसे सहानुभूति सिंपैथी से भिन्न माना है। सामान्य जीवन में हम सहानुभूति व्यक्त करते समय व्यक्ति विशेष के दुख के प्रति अपनी सहृदयता का तो परिचय देते हैं, किंतु हम उसके दुख को पूर्णतः आत्मसात नहीं कर पाते, जबकि समानुभूति में आलंबन और आश्रय दोनों की अनुभूतियों की समता आ जाती है। यही तादात्म्य है। भोजकत्व व्यापार। भट्ट नायक ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व या भोग अथवा उपभोग का नाम दिया है। इसका अर्थ है कि आनंद की अनुभूति का भोग। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रस का स्वरूप आनंदमय है, अतः रस की अनुभूति का अर्थ है आनंद की अनुभूति। रस के कई भेद बताए गए हैं, किंतु सभी की अंतिम परिणति आनंद में होती है। भट्ट नायक के अनुसार भी काव्य के संदर्भ में भावकत्व की प्रक्रिया के फलस्वरूप साधारणीकरण होता है, और साधारणीकरण के ही चरम स्थिति रसानुभूति या आनंदानुभूति है। उपर्युक्त आनंदानुभूति का मूल कारण क्या है? इसका उत्तर देते हुए भट्ट नायक ने सांख्य दर्शन को आधार बनाया है, जिसके अनुसार हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण ही आनंद है, किंतु रजोगुण एवं तमोगुण के प्रभाव से यह आनंद का गुण लुप्त या आवृत्त हो जाता है। जब कला स्वादन या योग समाधि या किसी अन्य साधना के द्वारा आत्मा पर से रजोगुण एवं तमोगुण का आवरण हट जाता है, तो सत्वगुण का प्रकटीकरण सहज ही हो जाता है, और यह सत्वगुण ही आनंद की स्थिति का द्योतक है। अस्तु, दार्शनिक दृष्टि से यह सत्व का उद्रेक ही आनंदानुभूति का मूल आधार है। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो जब हम रजोगुण एवं तमोगुण के द्योतक राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें सहज ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। वास्तव में सारा संसार सौंदर्य से युक्त है, किंतु हम अपनी अपनी व्यक्तिकता की सीमाओं तथा राग द्वेष से ग्रस्त होने के कारण निर्द्वंद भाव से उस सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर पाते। सौंदर्य को देखते ही हम उसे प्राप्त करने की लालसा से उद्वेलित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह सौंदर्य भावना, जो कि आनंददायिनी शक्ति से युक्त है, लुप्त हो जाती है, और हम अपनी वासनाओं, इच्छाओं और लालसाओं से पीड़ित होकर दुखी एवं अशांत हो जाते हैं। अस्तु, न केवल काव्य में अपितु लौकिक जीवन में भी यदि हम तटस्थ निर्वैयक्तिक एवं सत्वगुणात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकें, तो हमारे लिए समस्त विश्व एक रंगमंच एवं संसार की सभी क्रियाएं सौंदर्य में परिणित हो सकती हैं, और हम प्रत्येक क्षण आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय दर्शन एवं साधना पद्धति में इसी स्थिति को आत्मानुभूति की स्थिति कहा गया है, जो कि आनंद की चरम स्थिति की द्योतक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति की प्रक्रियाओं एवं साधारणीकरण सिद्धांतों की स्थापनाओं के द्वारा रस सिद्धांत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कार्य किया है। उनके साधारणीकरण सिद्धांत को तो एक सार्वभौम सिद्धांत की संज्ञा दी जा सकती है। जैसा कि हमने पीछे संकेत किया है, साधारणीकरण सिद्धांत को न केवल भट्ट नायक प्रवर्ती प्राय सभी भारतीय आचार्यों ने मान्यता प्रदान की है, अपितु पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र में भी इसकी सत्ता विभिन्न विद्वानों ने स्वीकार की है। यह दूसरी बात है कि उन्होंने इसका नामकरण विभिन्न शब्दों में किया है, यथा निर्वैयक्तिकता, स्वार्थ शून्यता, समानुभूति आदि। इसके अतिरिक्त काव्य की दृष्टि से रस निष्पत्ति के अन्य पक्षों एवं रस के स्वरूप को दार्शनिक आधार पर स्पष्ट करने में ही उनका योगदान महत्वपूर्ण है। आचार्य अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। आचार्य अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं शताब्दी ने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की विस्तृत टीका के रूप में अभिनव भारती की रचना करते समय रस सिद्धांत पर निजी दृष्टिकोण से विचार किया है। जहां उन्होंने एक ओर पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों की आलोचना की है, वहां उन्होंने दूसरी ओर रस सिद्धांत के संबंध में अनेक नूतन स्थापनाएं भी प्रस्तुत की हैं, जिन्हें यहां संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। क रस का स्वरूप। रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त ने यह प्रतिपादित किया कि रस नाटक या काव्य रचना का कोई एक अंग या तत्व नहीं है, अपितु वह समस्त रचना में व्याप्त सर्वांगीण तत्व है। जिस प्रकार हम जीवित व्यक्ति के शरीर में प्राण को उसका कोई एक अवयव या तत्व नहीं मान सकते, उसी प्रकार रस भी काव्य का कोई विशेष अवयव या तत्व नहीं कह सकते। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रस का संबंध नाटक या काव्य के संपूर्ण अर्थ से है। प्रायः स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव आदि के आधार पर रचना की व्याख्या करते समय यह भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि रस की सत्ता केवल स्थायी भाव में अथवा किसी अन्य अवयव में होगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। नाटक या काव्य में भाव आदि के अतिरिक्त विचार या शैली संबंधी भी जिन तत्वों की अभिव्यक्ति की जाती है, वे सभी रस में परिणत हो जाते हैं। ख स्थायी भाव और रस का अंतर। इन दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त ने बताया कि स्थायी भाव जहां सामान्य जीवन की लौकिक अनुभूति है, वहां रस की अनुभूति कला, नाटक या काव्य के माध्यम से होती है। दूसरे, रस में स्थायी भाव विभिन्न शैलीगत तत्वों, गुण, अलंकार आदि से समन्वित होकर सौंदर्य युक्त हो जाता है, जबकि स्थायी भाव साधारण शब्दावली में व्यक्त होता है। तीसरे, रस में स्थायी भाव साधारणीकृत रूप में होता है, जबकि व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता। चौथे, रस की अनुभूति निर्विघ्न रूप में होती है। और पांचवें, रस का आस्वाद सदैव आनंदमय होता है, जबकि लौकिक भावों पर ये बातें लागू नहीं होती। कहना न होगा कि अभिनव गुप्त ने रस और स्थायी भाव के अंतर को स्पष्ट करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। ग रसानुभूति के तीन आधार। किसी भी काव्य या नाटक से रस प्राप्ति में मुख्यतः तीन आधारों का योग रहता है। एक, काव्यगत आधार। दो, सामाजिक आधार। एवं तीन, परिस्थितिगत आधार। अभिनव गुप्त ने स्पष्ट किया कि जब तक काव्य या नाटक में विषय वस्तु को कलात्मक या सौंदर्ययुक्त शैली में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक उससे रसानुभूति संभव नहीं है। दूसरे, पाठक या श्रोता अपनी जन्मजात वासनाओं या सहज प्रवृत्तियों के कारण ही रसानुभूति प्राप्त करते हैं। काव्य या नाटक के आस्वादन के समय हमारी वासनाएं और सहज प्रवृत्तियां प्रभावित, उद्बुद्ध एवं उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब काव्य या नाटक में उसका नायक अपने शत्रु से प्रतिशोध लेकर संतोष का अनुभव करता है, तो पाठक या दर्शक की भी प्रतिशोध भावना साधारणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में, भले ही हम काव्य में अन्य पात्रों की भावनाओं, प्रेम, घृणा, शोक, भय आदि के अभिव्यक्ति देखते हों, किंतु काव्यगत पात्रों से हमारा ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जाता है, उनके माध्यम से हम अपनी ही भावनाओं के अभिव्यक्ति करते हैं, तथा हमारी सही भावनाएं किसी न किसी वासना या सहज प्रवृत्ति पर आधारित हैं। अतः कहना चाहिए कि अंततः काव्य, नाटक या कला से हमारी अपनी ही वासनाएं या भावनाएं अप्रत्यक्ष रूप में उद्वेलित होकर व्यक्त होती हैं। इस दृष्टि से काव्यास्वादन से प्राप्त होने वाला रस या आनंद मूलतः हमारी अपनी ही वासनाओं, भावनाओं या सहज प्रवृत्तियों के अभिव्यक्ति का आनंद है। रसानुभूति का तीसरा आधार परिस्थितिगत है। यदि काव्यास्वादन के समय हमारी अपनी मनस्थितियाँ या बाहर की परिस्थितियाँ अनुकूल न हुई, तो उस स्थिति में भी रस की अनुभूति नहीं होगी। रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रतिकूल स्थितियों को अभिनव गुप्त ने विघ्न की संज्ञा देते हुए उसके सात भेद बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। एक, अर्थबोध की असमर्थता। यदि काव्य या नाटक की भाषा ही अस्पष्ट, दुरूह या जटिल हो, तो उससे रसानुभूति में विघ्न उपस्थित होगा। कई बार जब हमारा अपना भाषा ज्ञान भी न्यून हो, तो वहाँ भी ऐसा ही होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम जर्मन भाषा की कोई कविता सुन रहे हैं, किंतु यदि हमें जर्मन भाषा का ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उससे रस की उपलब्धि संभव नहीं है। दो, निजी सुख दुख का प्रभाव। यदि काव्यास्वादन के समय हम अपने व्यक्तिगत सुख दुख से अत्यधिक अभिभूत हों, तो उस स्थिति में भी रसानुभूति संभव नहीं है। तीन, चार, देश और काल की अविच्छिन्नता। कला के आस्वादन के समय देश काल की सीमाओं से मुक्त होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि हम शेक्सपियर का नाटक देख रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड का वातावरण दिखाया गया है, जो कि भारतीय परिस्थितियों से भिन्न है, ऐसी स्थिति में यदि हम भारतीय परिवेश से ही जुड़े रहते हैं, तो रस की अनुभूति नहीं होगी। इसी प्रकार, किसी अतीत काल की रचना का अध्ययन करते समय हमारा आधुनिक काल या वर्तमान काल की सीमाओं से मुक्त होना आवश्यक है। पांच, माध्यम की अस्पष्टता। मान लीजिए हम कोई कविता सुन रहे हैं, किंतु कवि की आवाज इतनी धीमी है कि हमें वह सुनाई नहीं पड़ती, या उसकी अभिव्यंजना अस्पष्ट है, तो वहां भी रसानुभूति संभव नहीं है। छह, प्रधान की अप्रधानता। किसी भी काव्य, नाटक या रचना में प्रमुख पात्र या घटना का गौण या गौण को प्रमुख बना दिया जाए तो वहां भी रस की निष्पत्ति में बाधा होगी। प्रदर्शन की संशयात्मकता। यदि काव्य या नाटक में किसी ऐसी घटना या परिस्थिति का चित्रण किया जाता है जो कि पाठक या दर्शक को सर्वथा अस्वाभाविक या असंभव प्रतीत हो तो उस स्थिति में भी रस की अनुभूति नहीं होगी। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रस निष्पत्ति के लिए जहाँ रचना में सौंदर्य का होना आवश्यक है वहाँ पाठक की वासनाओं व भावनाओं के व्यक्ति का होना तथा काव्यास्वादन के समय किसी भी प्रकार के विघ्न का उपस्थित न होना भी आवश्यक है। इस प्रकार अभिनव गुप्त ने रस निष्पत्ति की व्याख्या काव्य, पाठक और परिस्थिति इन तीनों के आधार पर की है जो उनके व्यापक दृष्टिकोण एवं गंभीर चिंतन की द्योतक है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ अभिनव गुप्त ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की अन्य स्थापनाओं का खंडन किया है वहाँ उन्होंने भट्ट नायक के साधारणीकरण या तादात्म्य के सिद्धांत को स्वीकार किया है। अभिनव गुप्त का महत्व। रस के स्वरूप एवं रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के स्पष्टीकरण में अभिनव गुप्त के योगदान का महत्व अनेक दृष्टियों से है। एक तो उन्होंने काव्य, नाटक या कला का सर्वोपरि तत्व सौंदर्य को माना, जबकि उनके विचार से विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव आदि केवल सौंदर्य के साधन मात्र हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने काव्य में रस का आधार केवल स्थायी भाव को ही नहीं माना अपितु विचार या ज्ञान तत्व के आधार पर ही रस की निष्पत्ति स्वीकार की है। इसे हम आगे अपने अन्य निबंध बौद्धिक रस एक नई स्थापना में स्पष्ट करेंगे। काव्य की विषय वस्तु को सौंदर्य में परिणत करने में शैलीगत तत्वों के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने परंपरागत काव्य संप्रदायों रस, रीति, अलंकार, ध्वनि आदि में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित किया है। दूसरे, उन्होंने रसानुभूति का संबंध पाठक या सामाजिक की जन्मजात वासनाओं पर आधारित सहज प्रवृत्तियों एवं भावनाओं से भी स्थापित किया है। काव्य, नाटक या कला के माध्यम से हम अपनी वासनाओं एवं उन पर आधारित भावनाओं के व्यक्ति जन्य आनंद उपलब्ध करते हैं। इस संदर्भ में हम उनके विचारों की तुलना अरस्तु के विरेचन सिद्धांत या क्रोचे के व्यंजनावाद से भी कर सकते हैं। अरस्तु ने भी त्रासदी जन्य आनंद का आधार हमारी अपनी दूषित एवं हेय वासनाओं के विरेचन निष्कासन को माना है, किंतु अभिनव गुप्त ने वासनाओं को दूषित या हेय नहीं माना अपितु उनके सामान्य रूप को स्वीकार किया है। दूसरे, अरस्तु का सिद्धांत केवल त्रासदी पर लागू होता है, कामदी पर नहीं, जबकि अभिनव गुप्त का सिद्धांत सभी रसों पर लागू होता है। इसका कारण यह है कि जहां अरस्तु ने सामान्य जीवन की वासनात्मक अभिव्यक्ति में और कलाजन्य अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं देखा वहां अभिनव गुप्त के अनुसार उनमें दो प्रमुख अंतर है। एक तो कलाकृति में व्यक्त वासनाएं एवं भावनाएं शैली के सौंदर्य से युक्त होती हैं, दूसरे उनका साधारणीकरण हो जाता है। इन दोनों तत्वों के कारण ही घृणा, भय, शोक जैसे लौकिक जीवन के कटु भाव भी कला के माध्यम से व्यक्त होकर मधुर अनुभूति या आनंदानुभूति अथवा रसानुभूति में परिणत हो जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद अरस्तु के विरेचन सिद्धांत से बहुत अधिक सूक्ष्म, गंभीर एवं व्यापक है। क्रोचे ने भी कला एवं काव्य जन आनंद को अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति का आनंद माना है। उसके मतानुसार कलाकार एवं सामाजिक दोनों ही कला के माध्यम से अपनी सहजानुभूति इंट्यूशन के अभिव्यक्ति करते हैं, किंतु अरस्तु की भांति क्रोचे ने भी न तो लौकिक जीवन के अभिव्यक्ति और कलाजन अभिव्यक्ति के अंतर को स्पष्ट किया और न ही अभिव्यक्ति से पूर्ण पूर्व वासनाओं, भावनाओं एवं अनुभूतियों के साधारणीकरण की बात कही है। इसी प्रकार प्रसिद्ध मनोविश्लेषक फ्रायड ने भी कला के माध्यम से वासना या काम वासना के अभिव्यक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किंतु कला वस्तु के सौंदर्यीकरण एवं भावानुभूतियों के साधारणीकरण की खोज में वे भी नहीं कर सके। अतः कहना चाहिए कि अभिव्यक्तिवाद से संबंधित उपर्युक्त सही पाश्चात्य मत आचार्य अभिनव गुप्त के अभिव्यक्ति सिद्धांत की तुलना में अपूर्ण एवं अविकसित सिद्ध होते हैं। तीसरे, अभिनव गुप्त पहले आचार्य हैं जिन्होंने रस निष्पत्ति के प्रक्रिया के संदर्भ में पाठक या सामाजिक की उन सीमाओं एवं बाह्य स्थितियों का निरूपण किया है जो कि काव्यास्वादन में विघ्न या बाधा उपस्थित कर सकती हैं। काव्य कितना ही सुंदर क्यों न हो और पाठक कितना ही सहृदय क्यों न हो, फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके कारण रस की निष्पत्ति नहीं होती। इस महत्वपूर्ण तथ्य की खोज करने का श्रेय आचार्य अभिनव गुप्त को ही है। उन्होंने इस संदर्भ में जिन सात प्रकार के विघ्नों की व्याख्या की है वे आधुनिक काव्य चिंतन एवं मनोविज्ञान की दृष्टि से भी सर्वथा संगत एवं मान्य कहे जा सकते हैं। इस प्रकार अभिनव गुप्त ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर रस निष्पत्ति का अत्यंत व्यापक एवं गंभीर रूप में विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे परिपूर्णता की चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। जहां तक कलानुभूति एवं काव्यास्वादन की प्रक्रिया का संबंध है, आचार्य अभिनव गुप्त की स्थापनाएं आधुनिक ज्ञान, मनोविज्ञान एवं सौंदर्य शास्त्र की भी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हैं। उनका रस केवल काव्यगत रस ही नहीं है, अपितु सभी कलाओं से प्राप्त होने वाले आनंद का पर्याय है। अतः अभिनव गुप्त का रस संबंधी विवेचन केवल काव्यशास्त्र या नाट्यशास्त्र की ही सीमाओं में आबद्ध नहीं है, अपितु वह विश्व के व्यापक कला दर्शन या सौंदर्य शास्त्र की भी अनेक महत्वपूर्ण गुत्थियों को सुलझाकर उसके विकास में योग देता है। वस्तुतः आचार्य भरत मुनि से लेकर अभिनव गुप्त तक लगभग एक सहस्राब्दी की कालावधि में काव्यास्वाद एवं काव्यास्वादन की प्रक्रिया का जो गंभीर चिंतन हुआ, उसी की चरम परिणति अभिनव गुप्त की स्थापनाओं में देखी जा सकती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों भरत, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्ट नायक आदि के महत्व को गौण कर रहे हैं। वस्तुतः रस संबंधी चिंतन परंपरा को सतत विकासोन्मुख रखने का श्रेय इन सभी विद्वानों को है, और निश्चय ही अभिनव गुप्त की उपलब्धि में भी उनके पूर्ववर्ती आचार्यों की स्थापनाओं का योगदान कम नहीं है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि काव्य एवं कला की आस्वादन प्रक्रिया के प्रायः सही पक्षों एवं अंगों का विभिन्न दृष्टियों से जैसा सूक्ष्म एवं प्रौढ़ विवेचन इन आचार्यों के द्वारा हुआ, वह विश्व के कला दर्शन एवं सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में भारतीय मनीषा का स्थायी योगदान है, जिसका सही मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है। हमारा विश्वास है कि भविष्य का कला चिंतक इस अभाव की पूर्ति कभी न कभी अवश्य करेगा, तथा उसी स्थिति में हम इन आचार्यों के महत्व का बोध सम्यक रूप में कर सकेंगे। इस तरह रस निष्पत्ति एवं साधारणीकरण शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।